ओम शांति। ये सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी मिला है कि बाबा ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, जब संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को बाबा ने प्राप्त किया, कौन सी तारीख को? 18 जनवरी 1969। तो जब बाबा ने इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया तो मुझे ये सौभाग्य मिला अपनी आंखों से। था तो मैं बहुत दूर आसाम में पोस्टेड था, ONGC में जहाँ मैंने ज्वाइन किया था, और फिर भी बाबा ने जैसे अंतिम समय बुला लिया और 17 जनवरी 1969 को हम यहाँ मधुबन में पहुँच गए और बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्टेज, वो सब देखने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बहुत बड़ा परम सौभाग्य है, और अगर समय ने परमिट किया तो उसकी भी कुछ बात शेयर करेंगे। विषय तो मिला हुआ है पुण्य आत्मा बनने की विधि, और हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो काफी हद तक तो पुण्य आत्मा बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं, और काफी हद तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सब बने भी हैं, लेकिन बाबा हमें उस श्रेणी का पुण्य आत्मा बनाना चाहता है जिस श्रेणी का बाबा खुद पुण्य आत्मा बने थे, और उस अवस्था में ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए। कल ही की मुरली जब हम लोग सुन रहे थे, कल प्रातः क्लास, उसमें ही बाबा ने पुण्य की परिभाषा बताई है, एक लाइन में छोटी सी। हम सब पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य आत्मा बनने के राही तो हम सब हैं ही, लेकिन पुण्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पुण्य? लौकिक दृष्टिकोण से तो कोई भी अगर अच्छा काम किया जाए, यानी कि कोई अंधा है व्यक्ति उसे रास्ता पार कराने में मदद कर दी जाए, कोई प्यासा है उसे पानी पिला दिया जाए, भूखा है रोटी दी जाए, आदि आदि, तो ये सब पुण्य के काम है। ठीक भी है, हद तक हम करते चले, अच्छे काम है ये, लेकिन बाबा ने पुण्य की परिभाषा बहुत दो शब्द में ही बता दी, कल ही की मुरली में है। बाबा ने कहा पुण्य अर्थात ऐसा काम करना जिससे दूसरे के मन से आशीर्वाद निकले, बस दुआओं का भंडार हम इकट्ठे करते जाएं तो पुण्यात्मा और बनते जाएंगे। तो ये देखना है, चेक करना है। बाबा ने कल ही होमवर्क दिया कि मैं कितनी पुण्यात्मा बनी हूँ, और मैं ऐसा कर्म तो कोई नहीं करती आत्मा जिसके द्वारा किसी को दुख मिले, क्योंकि दुख मिलेगा तो उसे तो वो तो मुंह से दुआ निकलेगी नहीं, उसके पुण्य आत्मा बन नहीं पाएंगे, वो तो नेगेटिव खाता जमा हो जाएगा। तो इसीलिए पुण्य आत्मा बनने के लिए एक तो हमारे कर्म ऐसे हों जो दूसरों के मुंह से, सबके मुंह से दुआएं निकले, कल्याण की भावना निकले, शुभ भावना, शुभ कामना। तो ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे सामने तो रोल मॉडल कौन कौन है यज्ञ में, जो पुण्य आत्मा बने हैं, कौन है? सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा खुद ही रोल मॉडल है, जिन्होंने की इतनी सब यज्ञ की जवाबदारियां होते हुए भी सब लौकिक अनुभव करते बाबा कहता देखो ये भी उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ था, यानी कि अदर कुमार, और उसके बावजूद भी बाबा कितने समय में संपूर्ण बन गए, कितने साल में, हाँ ये तो टिक होना चाहिए। हमारे यज्ञ की स्थापना कब हुई थी? 1936-37 में, और 69 में बाबा संपूर्ण बन गए, तो लगभग 33 वर्ष से भी कुछ कम समय में बाबा संपूर्ण बन गए, कंप्लीट। हाँ, पुण्य आत्मा, तो उसके लक्षण भी क्या क्या होते हैं और जो हमने भी अपनी आंखों से देखे वो भी हम बताते जाएंगे, लेकिन मुख्य बात क्या होती है? पहली बात, अपने ऊपर अटेंशन, बस ये ही लत लगी रहे। जैसे विद्यार्थी होता है एग्जाम, और जो टॉप करते हैं अक्सर करके उनके इंटरव्यू वगैरह भी आते हैं, मीडिया वाले प्रश्न पूछते हैं तो वो बताते हैं मैं 10 घंटा पढ़ता था, 12 घंटा पूरे साल भर पढ़ता रहा आदि आदि, तो ये बस ये ही हमारी धुन लगी रहे, मुझे पुण्य आत्मा बनना है, कर्मातीत बनना है। और बाबा को भी यही था, ब्रह्मा बाबा साकार में तो यहाँ हम सबके सम्मुख थे, लेकिन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा भी है, आप सबको मालूम है सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा। तो कई बार संदेशियां जब वतन में जाती थीं, तो बाबा पूछा करते थे उनसे कि वहां जाकर देखना कि वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मा है, उसमें और मुझ में क्या अंतर है। तो बाबा धीरे धीरे अपना ऑडिट भी करते चलते थे, अपने चेकिंग भी करते चलते थे, इतना अटेंशन था। तो जब संदेशी जाती थी और आती थी तो बताती थी बाबा बाकी तो सब बिल्कुल रूप रंग तो वही है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मा शकल तो कोई, हम भी जब संपूर्ण बनेंगे तो शकल तो कोई बदलेगी नहीं, लेकिन उनमें तेज बहुत है, लाइट बहुत है। तो फिर बाबा को एकदम और धुन होती थी कि मुझे वैसा बनना है, तो बाबा का हर कर्म पर अटेंशन रहता था कि कहीं किसी भी कर्म में कोई ऐसा नेगेटिविटी कुछ भी किसी भी प्रकार की था। तो ब्रह्मा बाबा भी साधारण, शुरू में हम लोगों की तरह ही सबके प्रवृत्ति मार्ग की तरह प्रवृत्ति थी, पत्नी बच्चे पोता पोती आदि सब कुछ थे, धंधा था, बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का धंधा था, समाज के अंदर बहुत मान था बाबा का, सब कुछ था लौकिक, लेकिन सब होते हुए भी बाबा का ध्यान, जब से ये यज्ञ की स्थापना हुई तब से बाबा का ध्यान, बस ये मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण। तो पहले तो जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी हुई थी, 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म करना, नया खाता जमा करना पूरा, और पुराने सब संस्कारों को खत्म करना, ये सब सिर्फ 33 वर्ष में ही बाबा ने कर लिया। तो इसीलिए अब हमें ये देखना चलना है कि हमारा भी अपने ऊपर इतना अटेंशन है, बाबा का कितना अटेंशन था। आप सबने सुना है कि पढ़ा भी होगा जीवन कहानी में, बाबा ने पक्का किया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, निर्मल आत्मा है, परिवार के सदस्य आदि आदि। तो इतना अटेंशन हमारा भी है कि हम जिस लौकिक अलौकिक परिवार में और जहाँ भी रहते हैं, सब आत्माओं को उस रीति से देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, ये भान रहता है ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। भले पुरुष रूपी वस्त्र या स्त्री रूपी वस्त्र पहना है, लेकिन ध्यान ये ही रहे कि मुझ आत्मा को ये आत्मा इनके साथ कार्य व्यवहार के निमित्त बनना है और बस मुझे लक्ष्य यही है कि वापस घर जाना है कर्मातीत बन के। तो एक तो हमारे मन में ये अटेंशन इतना बड़ा तगड़ा रहे हर समय कि मुझे संपूर्ण बनना है। जब लक्ष्य होता है तो सब बातों से ध्यान कम हो जाता है, हट जाता है और इधर रहता है। इसीलिए और इसका प्रमाण क्या, हम बनते तो जा रहे हैं, प्रमाण क्या, तो हमें अनुभव है 6-7 साल का, क्योंकि जब ज्ञान में आए तो बस बाबा के पास जब जाते थे तो बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसा कह के बाबा हाथ फैला देते थे और हम लोग बस बाबा की बाह में जाते ही अशरीरी बन जाते थे, विदेही बन जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा को इतना विदेहीपन का अभ्यास था, अशरीरीपन का, कि बस जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे, जिसको भी बाबा आलिंगन जिसका करते थे, अंत के 2-3-4 वर्षों में तो बाबा किसी को पास आने का ना ज्यादा, वो डॉक्टरों ने मना किया था क्योंकि उनका इन्फेक्शन वगैरह न लग जाए। बाबा की एज भी 92-93 के बाद ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बाबा दूर से ही दृष्टि देते थे और दृष्टि देते ही वो आत्माएं जैसे, कोई ध्यान में नहीं जाते थे, साक्षात्कार में नहीं जाते थे, लेकिन शरीर भूल जाते। तो पहली बात तो यही है कि ये हम चेक करते चले, हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है और जितना जितना हम आत्मिक दृष्टि से देखते चलेंगे, उनको दृष्टि देंगे तो वो आत्माएं भी विदेही बनती जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए सबसे बड़ी बात है जो बाबा ने भी अनुभव किया शुरू में, कि ज्ञान में तो आ गए और यज्ञ की स्थापना भी हुई, लेकिन मन बाबा का भाग जाता था। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपने, जो बाबा कहता है खजाने तो बहुत बाबा ने बताए हैं, कितने सारे खजाने बताए हैं, लेकिन उनमें सब खजानों में भी सबसे इम्पोर्टेंट खजाने बाबा ने बताए हैं कौन से, संकल्प और समय का खजाना। यानी कि मन के अंदर संकल्प होते हैं और संगम युगी समय का खजाना, ये दोनों खजाने बहुत वैल्यूएबल है, इनको वेस्ट नहीं करना है। और संकल्प से भी सूक्ष्म और क्या चीज है, वृत्ति हमारे अंदर, क्योंकि इस जन्म का तो हम सोच सकते हैं, याद है मन के अंदर जो विचार, लेकिन पिछले 63 जन्मों के तो हमें कुछ याद नहीं है, 62 जन्मों के। तो इस कारण से वो सब एक जैसे सब कॉन्शियस माइंड में या हमारे आत्मा के अंदर वृत्ति में बिल्कुल नीचे जैसे हैं, लेकिन समय समय पर वो संस्कार कई बार जागृत हो जाते हैं। आप कहोगे ये तो मन में ना चित्त में कुछ बात नहीं थी, लेकिन सडनली ये संस्कार कैसे मुझ में जागृत हो गया? क्यों? क्योंकि संस्कार नीचे पड़ा है, तो वो ही उसी को ही बहुत सूक्ष्म रूप में, जैसे अगर हम वृत्ति अगर कहें, तो ये हमारी वृत्ति को हमें चेक करते चलना है। और उस वृत्ति को चेक हम कब कर सकते हैं? ज्यादातर करके या तो अपनी स्वप्न अवस्था में, अपने स्वप्नों के द्वारा, या अपने जो संकल्प के अंदर जो सूक्ष्म संकल्प समय प्रति समय कोई बात होती है उसके ऊपर अटेंशन रखते हुए, तो उसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। इसीलिए आगे तो हमें बढ़ना ही है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ एक दूसरी चीज है ये चेकिंग अगर करते चलेंगे तो पता चलेगा हमारा रास्ता सही है या उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। आज इतने ऊपर ग्रहों के ऊपर वैज्ञानिक लोग भी मंगल ग्रह तक भी रॉकेट वगैरह भेज दिए हैं अपने, उन सब के जब यहाँ से छोड़ते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन करके ठीक छोड़ते हैं, लेकिन बीच बीच में समय प्रति समय उसका मार्ग थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अगर डायरेक्शन अलग हो गई, स्पीड उसकी चेंज करनी पड़ती है, सब तो ये भी हमें चेकिंग करना भी बहुत जरूरी है कि मैं कितनी पुण्य आत्मा बनती जा रही। बाबा ने तो कहा हम सबके कर्मों में भी फर्क आया। आप सब देखो जब ज्ञान में पहले दिन आए थे, अज्ञानी थे, तो हमारे कैसे कर्म होते थे, लौकिक दुनियावी, और धीरे 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 हमारा खान पान रहन सहन ये सब तो बदल गया, काफी हद तक बदल गया। तो बाबा ने भी कई बार, हमें याद है एक बार बाबा ने संदेश में कहा, मुझे भी अपने बच्चों पर नाज है, बच्चों में अब विकारी संकल्प तो नहीं आते। बाबा उसको सर्टिफाई करता है विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। तो इसीलिए हमें अपने को देखते चलना है कि विकारी संकल्पों पर तो काफी हद तक हमने विजय प्राप्त करी है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों पर, अपने ही परिवार के लोगों पर जिनके साथ हम संपर्क संबंध में आते हैं, उनके व्यवहार पर, उनकी बातचीत पर कई बार व्यर्थ संकल्प पड़े, ये इतने वर्षों पुराना अभी भी इसके अंदर ये बात है, अभी भी ये पिक्चर देखते हैं, अभी भी ये बाहर का खाना खाते हैं, आदि आदि जो कोई भी कमी कमजोरी होती है उसे। इसीलिए बाबा ने कहा है अब इस समय आवश्यकता है एक तो साक्षी दृष्टा होने की, साक्षियों पर देखते चलो, और वो पुराने जरूर हैं, ज्यादा साल पुराने हैं, लेकिन बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट वाला भी आगे तब जाएगा, रेस होती है, पीछे वाला भी आगे तब जाता है जब आगे वाला उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो थक जाता है, वो पीछे रह जाता है, तो पीछे रहने वाला आगे निकलता है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कभी भी ये संकल्प भी ना आए कि भाई मैं बाद में इतने क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। बाबा क्या कहता है, अगर पहले आते तो ज्ञान इतना रिफाइन समझ नहीं सकते थे, तो क्या होता था, आपसे भी ऐसे ही कमजोरी भूलें ये सब हो सकती थी, और आप तब लास्ट सो फास्ट नहीं जा सकते थे। इसीलिए ड्रामा में जो कुछ भी है बहुत बहुत कल्याणकारी है, इसीलिए बाबा ने कहा है ड्रामा की ढाल पर खड़े होकर चलते रहो। तो वृत्ति जैसी होती है फिर वैसी हमारी स्मृति सेट होती जाती है, बाबा की याद स्मृति, और उससे क्या होता है वाइब्रेशंस बनते हैं, जैसे ऑरा होता है ना, देवी देवताओं के पीछे लाइट का ऑरा देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है देवताओं के मन की आंतरिक स्थिति। जितना जितना पवित्र होते चलेंगे, पुण्य आत्मा बनते चलेंगे, उतना उतना ये ऑरा हमारा लाइट कलर का होगा, बहुत क्लियर कट होगा। देवी देवताओं के ऑरा देखो कैसे गोल्डन कलर या वाइट या लाइट येलो दिखाते हैं। ऑरा हम सबके पीछे भी है, एक कैमरा होता है किरलियन फोटोग्राफी बोलते हैं, एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने किरलियन नाम था, उसने ऐसा कैमरा बनाया है कि जब व्यक्ति की फोटो खींचते हैं तो उसका ऑरा भी आ जाता है। मैं भी जब रशिया गया था तो मुझे मिलने का उससे सौभाग्य मिला, बहन जी ने खास उससे सेंटर पर बुलाया, वो अपने सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर के आया, और जैसे व्यक्ति का ऑरा लेते हैं, उंगलियों का भी ऑरा होता है, हर पार्ट का अपना अपना ऑरा होता है, लाइट रखते ही एकदम फोटो आ जाती है किस टाइप का है, और फिर वो उसकी पूरा रिपोर्ट। तो उसने कहा कि भाई ब्रह्मा, वैसे मेरे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय के लोग, गुरु गोसाई, लेकिन जितना अच्छा पवित्र ऑरा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का होता है उतना किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे को अंदर तक, हाँ, बिल्कुल हमारी धारणाएं चेंज होती हैं, हम अंदर तक पुण्य आत्मा बनते जा रहे हैं, बाहर के लोग जो और होते हैं उन सब में वो भी पुरुषार्थ करते हैं, नंबर वार सबका होता है, लेकिन हम लोगों का डायरेक्ट परमात्मा से संबंध है, परमात्मा की शक्ति हमें मिल रही है, इसीलिए हमारा ऑरा जितना क्लीन होता जा रहा है। हाँ, द्वापर युग से साधु सन्यासियों के ऑरा भी काफी हद तक, क्योंकि भक्त आत्मा थे तो काफी हद तक अच्छे थे, सतो प्रधान ना भी हो सतो जैसे भी थे, लेकिन आज की तरह तमो प्रधान 90%, जो व्यक्ति जितना तमो गुणी होगा उसका ऑरा उतना डार्क कलर का होगा, हेजी होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, काला, बहुत डार्क वगैरह। लेकिन जो व्यक्ति जितना पवित्र होता जाता है, पुण्य कर्म करके पुण्यात्मा बनता जाता है, उतना उतना उसका ऑरा बहुत स्पष्ट, साफ, क्लीन होता चला जाता है। तो इसलिए अब हमें ये देखना है कि, और वो क्या होता है, वो हमारे वाइब्रेशन से बनता है। वृत्ति हमारी जितनी शुद्ध होती जाएगी अंदर के संकल्प, उतना उतना ये ऑरा शुद्ध। तभी तो साधु सन्यासी द्वापर युग में बहुत जंगलों में रहते थे, इतने हिंसक प्राणी भी होते थे, लेकिन कोई भी उनके पास आने का, उनके ऊपर अटैक करने का साहस नहीं कर पाते थे कोई भी जानवर। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना शक्तिशाली होता था, दूर से ही वो हिंसक प्राणी भी दूर भाग जाते थे। तो एक ये बात है कि वृत्ति हमारी अंदर के संकल्प शुद्ध होते जाएंगे तो मंशा भी शुद्ध शुद्ध होगी, तो वाइब्रेशन, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, जो थोड़ा साइंस पढ़े हैं, साइंस में एक चीज होती है ये वाई शेप की, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं उसको, थोड़ा जरा सा किसी चीज पर थोड़ा टच करो तो वो वाइब्रेट करता है और आवाज निकालता है, जूम, फिर धीरे धीरे वो डाई डाउन होती जाती है आवाज। लेकिन उसके पास अगर दूसरा भी वो लाओ ट्यूनिंग फॉर्क, टच कराने की जरूरत नहीं, दूर से ही वो उसके वाइब्रेशन कैच कर लेता है और वो भी वाइब्रेट करने लगता है। जब स्थूल चीजें जो है वो एक से दूसरे वाइब्रेशन पर जा सकती हैं, तो हमारी मंशा जो बाबा कहता है सकाश आप बच्चों को देना है, आज संसार में भय और निराशा का जो थोड़ा वातावरण है, आप सकाश देंगे तो आपके वाइब्रेशन उन तक पहुंचेंगे और उन्हें शक्ति का, शांति का, जिस आत्मा को जो चाहिए उसको वो देते चले जाओगे, यही पुण्य आत्मा बनने की सबसे बड़ी विधि है। तो ये जितना वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, चारों तरफ वैसा वायुमंडल आपको सबको अनुभव है, जब हम कोई अच्छे वायुमंडल में होते हैं, सेंटरों पर जाते हैं, बुद्धि एकदम बाबा की तरफ आकर्षित होती है और शुद्ध विचार आते हैं, और जब ये ही वो ही व्यक्ति अशुद्ध वातावरण में जाता है, कोई नाइट क्लब है, कोई दूसरा, या किसी की मृत्यु हो गई है, शमशान घाट में जाता है, तो उस समय भी वैसा भय का वातावरण और थोड़ा एकदम वैराग्य का सा वातावरण। इसका मतलब परिस्थितियों का हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है हमेशा। लेकिन बाबा कहता है कि आप अपनी स्वस्थिति इतनी मजबूत करो कि आपकी स्वस्थिति परिस्थिति को बदल दे। स्वस्थिति ऊंची हो, परिस्थिति कमजोर होती है। और यही बाबा ने हमें दिखाया। हमने देखा बाबा को कि इतनी बाबा की स्वस्थिति मजबूत थी, बाबा की उम्र काफी थी। माउंट आबू में सर्दी भी बहुत होती है तो कई बार बाबा को खांसी आती थी, विशेष करके सर्दी के मौसम में और ऐसे, और इस तरह खांसते खांसते कई बार बाबा का आंख भी जैसे गीली हो जाती थी। फिर कैसे बाबा करते थे, जैसे ये है तो ऐसे वहाँ तीन संदली हिस्ट्री हॉल में रखी हुई है। एक संदली पर बाबा बैठते थे, दूसरी संदली पर मम्मा बैठते थे और बीच की संदली खाली रहती थी। और खाली संदली पर कभी जब संदेशी गुरुवार होता था, संदेशी आती थी, भोग लगाती थी और वहाँ पर उसके पास ही श्री कृष्ण का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र, ट्रांसलाइट के चित्र रहते थे। तो जब कभी खांसी रूपी परिस्थिति बाबा के पास आती थी तो बाबा बस कहते थे, देखो बच्चे अभी तो पुराने तत्व है, पुराना शरीर है ये बना है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और तत्व भी सतो प्रधान होंगे, कोई भी शारीरिक व्याधि किसी को भी नहीं होगी, कैसी नई दुनिया होगी। और बाबा उस स्मृति को बढ़ाते चलते थे, देखो बच्चे ऐसे। तो खांसी कब गई, कब बंद हुई और खांसी रूपी परिस्थिति डाउन हो जाती थी और स्वस्थिति मजबूत होती जाती थी। और इस प्रकार से स्वस्थिति के द्वारा बाबा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते थे। तो पुण्यात्मा, हाँ हमें भी तो ऐसा ही तो बनना है ना। तो हमेशा यही लक्ष्य रखे हम भी जीवन का कि कोई भी परिस्थिति, परिस्थितियां तो आएंगी कलयुगी दुनिया में, शरीर की परिस्थिति, संबंधियों की, प्रोफेशन की, तन मन धन मन सबकी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति को इतनी मजबूत कर ले कि वो परिस्थिति हमारे ऊपर कोई परमानेंट प्रभाव डाल के न जा सके। थोड़े समय के लिए वो जरा हलचल में लाएगी, जब तक हम स्वस्थिति को और बढ़ाते चलेंगे, मजबूत करते चलेंगे, उसके बाद परिस्थिति पर विजय प्राप्त होती जाएगी। तो इससे वायुमंडल बनता है और आज इसीलिए मधुबन का वायुमंडल आप सब आते हैं। क्यों दो साल बाद और भी लगभग आए हैं, क्यों एकदम दुनिया से वातावरण चेंज अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले योगी तपस्वियों ने इतना तपस्या का वातावरण बनाया है। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, बस वहाँ पर इतना पवित्रता का, शुद्ध का, चिंता का वातावरण का अनुभव होगा। तो एक ये अपने को देखते चलना है। साथ साथ हमें बाबा ने कहा इसके लिए क्या क्या पुण्यात्मा बनने के लिए और आवश्यक है, वृत्ति। बाबा ने को भी अपनी मंशा को चेंज करने में टाइम लगा। मन को पत्र लिखा बाबा ने, बुद्धि को पत्र लिखा, लेकिन वो उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाता, समय कम है। लेकिन हम भी अपने मन को अगर चाहते हैं, कोई परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में मानो हमें सहन शक्ति की जरूरत है या सामना करने की शक्ति की जरूरत है, हम बुलाते भी हैं और कई बार नहीं आती है वो। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सामान की सीट पर बैठ करके उसे ऑर्डर नहीं करते। कोई ऑफिसर होता है, पॉलिटिशियन होता है, जब तक अपनी सीट पर बैठा है तो सब उसका ऑर्डर मानेंगे, लेकिन जब वो सीट से उतर जाता है, ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया कुछ, तो उस सीट पर बिना बैठे हुए वो जितना भी ऑर्डर करे कोई नहीं मानेगा। इसीलिए हमें भी बाबा ने इतने सोमानों की माला दी है, 100 से अधिक सोमान है। बाबा कहता है ऊपर जाएंगे तो लिस्ट में भी 108 समान लिखे हुए हैं और कईयों के आप सबके पास होंगे। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, मैं माला का मणका हूँ, बाबा आपका थैंक्स, बहुत मतलब पॉजिटिविटी और ऐसे ऐसे समान की सीट पर स्थित हो करके जब हम शक्ति को ऑर्डर करते हैं, शक्ति तुरंत, वो तो हमारी दासी है ये शक्तियाँ, तो वो तुरंत दौड़ी दौड़ी आते हैं और बस आके फिर जैसे ही हम संकल्प करते हैं, इस वक्त मेरे पास ये परिस्थिति आई हुई है और इस परिस्थिति से बाबा मुझे निकालो। बाबा ने शब्द भी दिए, मेरे बाबा मेरे साथी आओ आओ मेरी रक्षा करो, आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो। हमारा तो जीवन में अनुभव है, पचासों बार इतनी परिस्थितियां भी आई, विकट भी आई, लेकिन जैसे ही बाबा को पुकारा सच्चे दिल से, तो बाबा हमेशा कहते हैं मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे बुलाए और मैं ना हो, नहीं, यही तो संगम समय है जब बाप और बच्चों का, लेकिन बच्चे मुझे यूज नहीं करते। और जब परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है, चारों तरफ द्रौपदी की तरह, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने बोला कि भगवान आपने आने में इतनी देरी करी, तो उसने क्या बोला कि हे द्रौपदी तुम याद करो, तुमने पहले किसको याद किया, पहले अपने पतियों को, पांच पतियों को याद किया जब वो भी निगाह नीचे किए बैठे रहे क्योंकि कौरवों से हार गए थे, भीष्म पितामह को याद करा, जब गुरु द्रोणाचार्य, सबको याद किया, जब कहीं से भी मदद नहीं मिली तब उसने अंत समय में हे प्रभु भगवान रक्षा करो, तब उन्होंने कहा कि मैं दौड़ा दौड़ा आया और तुम्हारी रक्षा की। इसीलिए बाबा कहता है जब कोई परिस्थिति आए तो सीधा मुझे पुकारो। हाँ लौकिक का अगर मदद मिलती है, मदद लो, सहारा लो उनका, लेकिन पुकारो बाबा को ही। और वो भी क्यों द्रौपदी की रक्षा करी, बाबा एक का लाख गुना करके देता है, द्रौपदी ने भी ये कपड़े का बीज बोया था, सुना था होगा भक्ति मार्ग में ना, जब कृष्ण जी की उंगली कुछ आ गई दरवाजे में या किसी में कट गई, खून निकल रहा था, तो बाकी सब तो दौड़े पट्टी लाओ ये करो वो करो, उसने द्रौपदी ने तुरंत ही बस साड़ी का किनारा काटा और बांध दी पट्टी के रूप में। तब भगवान ने कहा था बीज एक का लाख गुना करके तुम्हें समय पर दूंगा द्रौपदी, और हर बच्चे के लिए ये वैलिड है कि हर बच्चा जब यहाँ पर अपना बीज बोएगा, तन मन धन समय संबंध कोई भी, तो समय पर बाबा बंधा हुआ, अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो पेड़ कहाँ से निकलेगा। तो हर चीज का, सेवा का, हर चीज का हम बीज, भले चाहे छोटे से छोटा, बाबा ने कहा है गरीब का एक पैसा भी अमीर के लाख के बराबर है, तो ये ना सोचा रे इसने कम से क्या होगा, लेकिन वो बीज तो है, उसका अनेक गुना करके बाबा हमें यही रिटर्न करता है और विकट परिस्थिति से हमें बचाता है। तो यहाँ पर अभी हमें देखते चलना है कि हमें ऐसा हो, तो इसीलिए हमें एक बाबा को हर परिस्थिति के लिए वो करना है याद। फिर बाबा ने कहा इसमें बाबा को वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो श्रृंगारित रहते हैं। सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कई बार बताया, ताज बोले, ताज तखत और तिलक का श्रृंगार, जिसका ये होता है ना, ताज पहना हो, तिलक विलक लगाया हो और तख्त पर बैठा हो सिंहासन पर, वो श्रृंगार सबसे अच्छा होता है। ऐसे ही बच्चों को बाबा ने भी कौन सा ताज दिया है, कौन सा तख्त, वो सब मालूम है, जिम्मेवारी का भी ताज है और यहाँ पर जो ताज है एक तख्त बाबा ने बताया, बाप दादा के दिल का तख्त, और जो तिलक है वो स्वस्मृति का तिलक, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप की स्मृति का तिलक। और ताज जो है बाबा ने बताया है यहाँ पर, तो इस समय वर्तमान समय जैसे जिम्मेवारी का ताज है सतयुग में, वो डबल ताज मिलेगा, तो प्योरिटी का ताज, तभी देवी देवताओं को वो प्योरिटी का ताज दिखाते हैं। तो बच्चे अगर श्रृंगारित रहेंगे ना, तो वो पोजीशन का सूचक है, और पोजीशन वाले पर कोई व्यक्ति अगर अकेलेपन में हाथ नहीं उठाता है, कभी भी जब वो व्यक्ति जब अकेला होगा और वो करने वाले घात करने वाले ग्रुप में होते हैं, तब उस पर वार होता है। तो हम अकेले का है, ताज तक तिलक सब ये मेरे रक्षक हैं, धारण किए हुए रहते हैं, तो माया का कभी भी वार नहीं हो सकता। इसीलिए एक इसके लिए ये चाहिए हम श्रृंगारित रहे। साथ में और क्या चाहिए, इसमें हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? बाबा कल पहले भी आपने मुझे बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो, और कलप कलप आप इसी तरह बनाते रहोगे। मैं विजयी रतन हूँ, मैं मेरे माथे पर विजय का तिलक आपने दिया हुआ है। बाबा बहुत थैंक्स, बस बाबा का गुणगान भी करते रहें और अपनी कमी कमजोरियों को कभी भी न लाने दें। हैं तो हम सब में, लेकिन हमेशा उसका वो करें, बाबा आप मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हो, मैं मास्टर व सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे सामने कोई समस्या नहीं। तो अपने स्वस्थिति के सिंहासन पर जितना बैठ के हम इस स्मृति में रहेंगे, तो हमारा पुण्य का खाता भी जमा होता जाएगा और हम आत्मा महान बनती जाएंगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि पुण्य आत्मा जितना जितना बनते जाएंगे, उतना उतना हमें अपना ऑडिट करने में, अपने को चेकिंग करने में मदद मिलेगी। और सिर्फ चेकिंग ही ना हो, लेकिन चेकिंग के साथ साथ चेंज भी, परिवर्तन की शक्ति भी। और वो परिवर्तन जब चेक करते हैं, तो एक तो हमें ये महसूसता होनी चाहिए पहला कि मुझे पुण्य आत्मा बनना ही बनना है, महान आत्मा बनना है, देवी देवता बनना है, ब्रह्मा बाबा को जैसे रहते थे। और उसके लिए बाबा ने कई ड्रिल बताई हैं, और एक जो लेटेस्ट ड्रिल बाबा ने बताई थी, कभी निराकारी स्वरूप की स्मृति में आओ, कभी सूक्ष्म वतनवासी यानी कि कभी फरिश्ता बनो। वो पांच स्वरूप की तो स्मृति दी हुई है, लेकिन उसके बाद बाबा और ऊपर ले जाता है, इसके लिए क्या करो, कभी सूक्ष्म स्थिति फरिश्ता स्वरूप की स्थिति धारण करो, कभी निराकारी वतन, बस निराकारी और सूक्ष्म वतन, फूल वतन से जैसे बस कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, पार्ट बजाने के लिए तो यहाँ है ही है, पार्ट बजाना है। और इसके लिए क्या करना है, बाबा ने कहा कि जब भी हम अपने को ये देखें कि मैं आत्मा, अगर किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना आ रही है, कोई बात आ रही है, हम तो चलो बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन दूसरा अगर नेगेटिव है, वो हमारे रास्ते में आड़े डालता है, तो हमारे अंदर एक शक्ति विशेष होने की, अशक्तियां तो बाबा ने बताई हैं, लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने कहा दो शक्तियों की बच्चों को विशेष जरूरत है, दो बातों की, कौन सा, एक रहम दिल और दूसरा दातापन। रहम दिल होना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि हर एक आत्माओं में से पुराने संस्कार जागृत होंगे, और जितने पुराने संस्कार निकलते जाएंगे, पुरानी बातें निकलते, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सब देखो, लेकिन किसी के प्रति मन में घृणा ईर्ष्या भाव न हो, क्यों, क्योंकि देखो ये आत्मा भी भले बहुत पुरानी है, नई है, कुछ भी है, लेकिन इसके संस्कार वो इतने कड़े हैं, तो एक तो ये चाहिए क्षमा भाव, उसको दिल में न रखें, क्षमा कर देते बाबा इस आत्मा को भी, भले ये पाप कर रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन रहम दिल बन करके ऐसा उनके उस आत्मा के प्रति हमारे मन में क्षमा भाव हो, ऐसा ना उसने मेरे साथ उल्टा करा। तो अक्सर करके क्या होता है, उसने नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, पीछे लाने का प्रयत्न किया, तो क्या होता है हमारे मन में भी आ जाता है विद्रोह की भावना की, अच्छा जब समय आएगा तो मैं भी इसे दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो ये भावने क्षमा भाव बिचारी मजबूर है। और दूसरा दाता पर, हम दाता पर बन के उस आत्मा को शांति का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का ये सकाश देते चले। और जितना जितना ये सकाश आता जाएगा उतना उतना वो आत्मा भी बदलती जाएगी और धीरे धीरे हमारे समीप आती जाएगी। आप कोशिश करो, ये कभी ना सोचो ये बदले तो मैं बदलू, नहीं, दूसरा नहीं बोलता है अगर आपके सामने आके, अगर चेहरा फेर लेता है, किसी बात में मन मुटाव है, आप शुरुआत करो, हेलो बहन जी, अभाई जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, एक बार आप बोलोगे, दो बार बोलोगे, लगातार जब ये करते रहोगे तब उनके मन में आएगा कि भाई मैं बोलूं ना बोलूं ये तो बोलेगा, तो बेटर रिस्पांस करो। और इस तरह जो एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी कटुता की भावना होती है वो भावना खत्म हो जाती है और बस वो उसके पूरे मार्ग समय मिल जाते हैं, क्योंकि हम उसमें आगे बढ़े। इसके लिए क्या करें, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, लास्ट दो तीन मिनट हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा 18 जनवरी को बाबा शरीर छोड़ा तो हम तो बहुत दूर पोस्टेड थे, 17 को आ गए, तो बाबा के पुरुषार्थ में एक तो ये देखा पिछले 3-4 सालों में उनमें 69 से पहले कि बाबा सब समेटते जा रहे हैं धीरे धीरे। जब आत्मा शरीर छोड़ती है अक्सर करके उसे वो बहुत याद आता है, वो या तो जिसमें मोह हो, बहुत मोह हो, प्यार हो तो वो याद आएगा, या जिसके प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना है वो याद आएगा। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा किसी के प्रति भी वो न हो। इसी ने गीता में जो कहा है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये अंतिम भाव। तो एक तो बाबा धीरे धीरे सब समेटते जा रहे, दूसरी बात हमारा जब शरीर छूटे तो इच्छा मिटती हुआ बारी हो। अगर हम भी दुनिया की तरह मर गए, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, सुनामी आई और ये बिल्डिंग गिरी और इसके नीचे दब के मर गए, तो हम में और दुनिया वालों में फर्क क्या हुआ। हमने देखा बाबा को कि बाबा अपनी इच्छा से जैसे शरीर छोड़ा, क्योंकि बाबा बिल्कुल समेटते जा रहे थे और 17-18 जनवरी को जो 2-3 काम पेंडिंग पड़े हुए थे फटाफट बाबा ने निपटाए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि बस आज मेरा या बच्चों से मिलने का ये अंतिम दिन है। तो इसीलिए बाबा ने सारे जो भी पत्र पेंडिंग पड़े हुए थे उन सब पत्रों के उत्तर दे दिए। किसी बच्चे को ये संकल्प न हो क्यों पत्र का उत्तर नहीं आया, क्योंकि तब ईमेल या ये सब इलेक्ट्रॉनिक ये गैजेट तो होते नहीं थे, तो पत्रों के उत्तर दे दिए। बाबा हमारा जो बिल्डिंग एक है नक्की लेक के पास जिसमें म्यूजियम है, वो बात चल रही थी लेने की, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं थे, तो उस दिन बाबा ने वो कर दिया, अच्छा इसको भी लेकर के यहाँ सेवा स्थान बनाया जाए। और रोज रात्रि क्लास होती है 9 बजे, उस दिन बाबा ने पहले ही बोल दिया बस आज बाबा 7 बजे क्लास लेगा, सब बच्चों को कह दो 7 बजे तक आ जाए। और खाना खा करके आए, भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था उसके बाद क्लास के बाद तो बाबा गुड बाई कहने वाला है, जाने वाला है, अपना बाबा को आभास। लेकिन बाबा ने किसी बच्चे को जरा भी ये प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि फिर बच्चों के संकल्प चलते, निगेटिव संकल्प चलते, तो इसीलिए उस दिन बाबा ने 7 बजे रात्रि क्लास कराई और उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का सूचक है कि जब हमारी भी अंतिम कर्मातीत अवस्था होगी, हम जब पुण्य आत्मा बने पूर्ण बन जाएंगे बाबा की तरह, तो हमारे भी कर्म भोगों के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। तो शरीर के कर्म भोग यह हमारा लास्ट पेपर है, शरीर के आएंगे बचे खुचे कर्म भोग, क्योंकि और तो कुछ साथ में होगा नहीं, सबके पास आए, दादियों के पास, बाबा के पास, मम्मा के पास। इस संदर्भ में मैं मम्मा की एक बात सुनाना चाहता हूँ कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तब तो बाबा थे, तो मम्मा जब ऊपर गई तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बैठे हुए थे, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आई? तो मम्मा चुप रही, मम्मा ने कहा नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया। तो जाओ जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, और वहाँ जाओ, उस शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके उसके बाद आओ। तो मामा को नीचे भेजा, मामा नीचे आई, और फिर थोड़े समय के बाद जब ऊपर गए तो वापस, तो बाबा ने कहा बच्ची अनुभव किया कि नहीं बाबा? क्यों बच्ची? कि बाबा जब मैं गई तो शरीर तो ठंडा पड़ चुका था बिल्कुल, शरीर के अंदर गई, कोई भी कर्मेंद्री काम नहीं कर रही थी, आंख खोलने का प्रयत्न किया तो आंख भी नहीं, कान भी नहीं, तो कर्मातीत अवस्था का तो मैं अनुभव नहीं कर पाई। तब बाबा ने कहा देखो बच्ची, कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया ना, तो अभी जाओ फिर पुनर्जन्म लो और तब बच्चे अगले जन्म में पुरुषार्थ करके जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगी, तब तक बाबा भी सूक्ष्म वतन में यहाँ है, और तब सब बच्चे और तुम हम सब इकट्ठे चलेंगे। तो देखो बाबा भी बैठा हुआ है और मामा ने भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं किया, तब तक मामा भी ऊपर नहीं गए वतन में, और तब तक हम कोई भी नहीं जा सकता परम धाम में जब तक हम भी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करके इतने पवित्र बन जाएं जिस स्थिति में हम ऊपर से आए थे। तो इसीलिए हमें वैसी ही पवित्र पुण्यात्मा स्टेज को प्राप्त करना है, इसलिए लक्ष्य ये रहे, कभी भी ये ना आए शरीर में व्याधि है, रोग है, शोक है कहीं संबंध में, अरे भाई इससे तो ये शरीर छूटे, नया शरीर लेंगे। नहीं, नया शरीर अगर मिलेगा वो तो 8-10 साल सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए हर परिस्थिति में ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसको हम संभाल के रखें, इससे पुरुषार्थ करें और फिर हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तो बाबा ने 18 तारीख को हमने देखा एक बार भी खांसी नहीं आई, और उसके बाद न कफ की क्लियर करने की जरूरत पड़ी, फिर बाबा गए। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, दरवाजे पर खड़े होके बाबा ने छुट्टी ली, और फिर बाबा शरीर छोड़ के जैसे अव्यक्त हुए, दादी जी के हाथ में हाथ। तो इस तरीके से हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, और इच्छा से कब शरीर छूटेगा वो तो एक क्लास बहुत अलग है कि इन 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी नहीं लेते। अभी तो ये है कि बस बाबा से ये कहे, बाबा ने एक बात बताई है बस, कि क्लीन और क्लियर बुद्धि रखोगे तो समय पर बाबा टच करेगा और आपके पैर उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ आप आपदा के कारण शरीर नहीं छोड़ेंगे, आपदा के आई आप उससे बाहर निकलेंगे, और अपनी इच्छा से जब शरीर छोड़ के आएंगे भीष्म पितामह की तरह, बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह, वो ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था होगी, वो ही संपूर्ण पुण्य आत्मा होंगे, और इस प्रकार से आप सब, फिर हम सब परम धाम इकट्ठा चलेंगे, और फिर परम धाम के बाद सतयुग में बाबा के साथ नई दुनिया में पार्ट बजाने आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।